ओम शांति। बाप दादा से मिलन मनाने जब बाबा के लाडले बच्चे इस पावन भूमि पर आते हैं तो जहन में एक ही बात होती है कि हम बाबा के अनमोल रत्नों से रूरिहान करें। हमारा प्यारा बाबा जौहरी भी है, चित्रकार भी है, शिल्पकार भी है। बाबा की आदि चैतन्य मूर्तियों में से एक विलक्षण मूर्ति आज हमारे समक्ष है। आदरणीय विमला दीदी जी, हम सभी आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी जी, साकार बाबा की आदि रतन है डेरा इस्माइल खां वर्तमान पाकिस्तान में आपने लौकिक जीवन यात्रा शुरू करी। 15 साल की उम्र में आपने बाप को पहचाना और मात्र 19 वर्ष की आयु में दिल्ली के कमला नगर में समर्पित सेवा शुरू की। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और गौरव की बात यह है कि आप दिल्ली की प्रथम समर्पित बहन रही हैं। आपने दादियों का सानिध्य प्राप्त कर 5 वर्षों तक दिल्ली में यज्ञ सेवा की। तत्पश्चात आपने आगरा में सेवा की और वृहद रूप से इसको सवारा। त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति आदरणीय दीदी जी वर्तमान समय आगरा जोन की इंचार्ज हैं और लगभग 35 सेवा केंद्र व उप सेवा केंद्र व लगभग 200 गीता पाठशालाओं को अपने मधुर स्वभाव और एक्यूरेट प्रबंधन से लाभान्वित कर रही हैं। ऐसी महान ज्ञान गंगा से आज हम सब शीतल होंगे। ज्ञान मार्ग में भावना और निश्चय संतुलन बनाने की विधि क्या है, आप इस पर प्रकाश डालेंगे। आपके लिए ये कहना बिल्कुल सही रहेगा, हो परम पिता की अद्भुत संतान, हो परम पिता की अद्भुत संतान। आपकी उत्कृष्ट सेवा से हर कोई प्रेरित होता है। समर्पण की आप अद्भुत मिसाल हो। समर्पण जीवन जिससे परिभाषित होता है, समर्पण जीवन जिससे परिभाषित होता है। आदरणीय विमला दीदी जी,
ओम शांति। बाबा के प्यारे प्यारे रत्नों से आज बाबा के दिए हुए रत्न बांट रहे हैं। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने बाप को पहचाना है और उनके हम बन गए और बाबा हमारा बन गया। और इस सीजन में जो विशेष दिल्ली आगरा और सब चारों तरफ के विश्व के भाई बहन आए हैं वो और ये भाग्यशाली हैं इस समय के। जैसे संगम युग सब युगों से श्रेष्ठ है, पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया का आगमन संगम युग है, ऐसे ये पुराना साल और नए साल का ये भी एक संगम है। तो इस संगम पर ये भी एक भाग्यशाली है क्योंकि इस समय हम सब बाबा के सामने अपने पूरे वर्ष का पोता मेल हम अपना स्वयं निरीक्षण करेंगे कि पूरे वर्ष में क्या हमने पाया, क्या हमने खोया। क्योंकि संगम युग का एक एक सेकंड भी बहुत कीमती है। तो इस समय हमने कितनी आत्माओं को जगाया, कितना सेवा की, ये बाबा हमारा सबका पोता मेल भी देखता है और नए युग आगे के वर्ष के लिए प्रेरणा भी देता है। दूसरी भाग्यशाली बात ये भी है कि जब दिन होता है सेरा तो कहते हैं आज सवेरे किसका मुंह देखा था आपने? तो इस नए वर्ष की शुभ वेला में, अमृत वेले, सेरे सेरे हम सभी किसका मुखड़ा देखेंगे? अपने प्यारे से प्यारे बाबा का, इससे महान, इससे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है? तो हमारा पूरा वर्ष ही कितना सौभाग्यशाली रहेगा, कहा जाता है वेल बिगनिंग आफ्टर। तो परमपिता परमात्मा का से स्वयं हमारी मुलाकात, स्वयं उनके नैन मुलाकात करके हम सभी ज्ञान रत्नों से कितने लाभान्वित होंगे, ये भी एक परम सौभाग्य हमें मिला है। और इस सौभाग्य के साथ साथ हमारे ऊपर कुछ जिम्मेवारी भी है, क्योंकि बाबा से हम इतनी सेवाएं लेते हैं तो उसका रिटर्न भी जरूर हम सबको करना ही है। क्योंकि आज शुरू शुरू में आप देखते थे कि सब लोग एक एक बाबा का बच्चा अलग अलग बाबा से मिलता था, फिर आपने देखा पार्टियां मिलती थी, फिर जोन मिलते थे, अब तो सब मिलते थे। अब थोड़ी थोड़े थोड़े समय के लिए बाबा आते हैं, तो ये भी एक कम नहीं है कि आज हम जब भी बाबा आते हैं तो हम हर एक ऐसे समझे कि बाबा मेरे लिए आया, मेरी पर्सनल मुलाकात बाबा से हो रही है, जो कुछ भी बाबा सुना रहे हैं मैं मुझे ही सुना रहे हैं, और मुझे उसका पूरी तरह से 100% पालन करना ही है। ऐसा अपने मन में विचार करेंगे, ऐसा हम स्वयं प्रति भी ऐसा ही संकल्प लेते हैं, और आप सब भी ऐसा संकल्प लें कि अगर जो बाबा हम बच्चों से आशा करते हैं या जो भी महावाक्य उच्चारण करेंगे वो हम सभी जरूर उसकी पूरी तरह से पालना करके उसका बार बार उसका मंथन करके उसको रिपीट करेंगे। दूसरी बात ये है कि आज इस वर्ष में जब हर एक को नए साल में सब जगह देखो ग्रीटिंग में भेजते हैं, जो अपने विशेष होते हैं उनको भेजते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? हर एक आत्मा को हमें शुभ भावना देनी है, चाहे हमारे से कोई एक प्रकार से वैर तो नहीं, कोई शुभ भावना नहीं भी रखता हो, उसके प्रति भी हमें शुभ भावना रखनी है। हर एक को हम दिल से ग्रीटिंग दें, और लिखकर कितने भेजेंगे, कितने लेटर लिखेंगे, और जो भी अपने सामने आए या हमारे सामने नहीं भी है तो भी हम दूर बैठे भी हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना रखें, और यहाँ तक कि हम तो देखो तत्वों को भी शुभ भावना देते हैं। आज सारा विश्व बाबा से कितना स्नेह रखता है, देश हो विदेश हो, सब धर्म के लोग, क्यों बाबा हम सबके प्रति कितनी विशेष आशाएं, कितनी हमारा कल्याण करते हैं, तो क्या हम बच्चे नहीं कर सकते? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते हर एक के प्रति शुभ भावना रखें? तो ये भी एक संकल्प दृढ़ता से हम पालन करेंगे तो आप देखेंगे ये एकदम वाइब्रेशन बदल जाएगा। दूसरी बात, हम सभी इस समय श्रेष्ठ पुरुषार्थी, जिसको कहें कि वास्तव में तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी कहें, महारथी कहें, महावीर कहें, तो हम सभी इस महारथी विशेष पुरुषार्थियों के क्या लक्षण हैं, क्या हमारे अंदर होना चाहिए? पहली बात ये कि जो बाबा ने बताया कि तुम्हारा चेहरा बोल और चलन यही सेवा करेगा। आज हम देखते हैं हमारे बाबा के कोई घर ऐसा नहीं, कोई कमरा ऐसा नहीं, कोई सेंटर ऐसा नहीं जहाँ बाबा का चित्र ना हो, मम्मा का चित्र ना हो, अपनी दादियों का चित्र ना हो। कि आज ये चेहरा कितनी सेवा करता है देखते ही याद आ जाता है। तो ऐसे ही हमारा भी चेहरा और चलन ऐसा हो जो ये भी अनेक आत्माओं को शुभ भावना दे, दुआएं दे। क्योंकि हम देवता बनने वाले हैं तो अब खजाना देना ही देना है। ये आशा नहीं करनी कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, वो हमें भावना दे, लेकिन नहीं, हमें देना ही है। तो आप बताइए कि बताओ कि दुआएं देना सहज है या लेना सहज है, देना सहज है या लेना सहज है, क्या सोचेंगे? हैं? देना सहज है ना, दुआएं देना तो सहज है, लेने के लिए आपको विशेष कुछ न कुछ सेवा या किसी आत्मा के साथ आपने कुछ न कुछ विशेष सेवा की है, सहयोग दिया है, समय पर आपने मदद दी है। आज एक डॉक्टर जब सफल अपना ऑपरेशन करता है उसको भी दुआएं देते हैं। इसी प्रकार से आज कोई भी किसी को अच्छी सर्विस पर लगा किसी प्रकार से सहयोग देता है। जिसने आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाया उसको भी हम एक प्रकार से दुआएं देते हैं। तो जब तक हम किसी की सेवा नहीं करते, दिल से नहीं करते, वो हमें दुआएं कैसे मिलेंगी? तो दुआएं लेना जो है वही विशेष बात है, देना तो बहुत सहज है। तो जो महारथी आत्मा है वो देना भी जानता है और लेना तो ऑटोमेटिकली होगा, उसके लिए प्रसाद नहीं करना पड़ता। तो और तीसरी बात ये है कि जो विशेष पुरुषार्थी है उसका पुरुषार्थ नेचुरल चलेगा, उसको चाहे अमृत वेला हो, चाहे बाबा के महावाक्य सुनने का हो, उसका हर बात नेचुरल चलेगा। अर्थात साथ साथ में जरा भी क्रोध का अंश भी नहीं होगा। आज देखो थोड़ी सी बात में कभी कभी कहते हैं किसी को रोब आ जाता है या थोड़ी आवेश में आ जाते हैं या और नहीं तो मूड ऑफ ही हो जाता है। तो उस समय बाहर से तो कोई कुछ नहीं कहेगा, अंदर से सारी कह देगा कि ये महारथी नहीं है, ये घोड़े सवार है। तो क्यों नहीं हम ये सोचें कि हमें ये भी एक सब्जेक्ट है जिसको हमें पूरा करना है। मिसाल की बात है, एक बार किसी बच्चा जो है बहुत क्रोध करता था और उसके अंदर बहुत कमियां थी। तो एक बार महात्मा जी के पास गया तो उनको कहा कि एक दवाई है तुम्हारे लिए और सामने जो पेड़ है ना उसमें से पत्तियां निकाल के ले आओ। और वो उसको खिलाई, बहुत ही कड़वी थी, इतनी कड़वी थी दूसरे दिन भी खिलाने लगा तो उसने क्या किया, पेड़ को एक उखाड़ के फेंक दिया। कहा क्यों, पेड़ को क्यों उखाड़ा? कि अगर मैंने खाया इतना कड़वा था, दूसरा कोई खाता तो उसका मुख। कहा इसी प्रकार से चाहे तुम कितने ही बड़े राजकुमार हो लेकिन कोई तुम्हें भी इसी प्रकार से दिल से निकाल देगा और ऐसे करेगा। तो कहने का भाव ये है कि हम जो अंश मात्र भी हमारा क्रोध ना हो तो चेहरा जिसको बाबा कहते हैं सदा हर्षित रहे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा ये हमारा रहे, तभी हम महारथी के लेन में आ सकते हैं। अब हम सबके सामने एक प्रश्न है कि भावना और निश्चय, तो पहले निश्चय होगा फिर भावना बैठेगी, या पहले भावना होगी तब निश्चय बैठेगा? पहला नंबर किसको कहेंगे, पहले भावना या पहले निश्चय? हैं? पहले भावना पीछे निश्चय? हैं? पहले निश्चय, जो समझते हैं पहले निश्चय, भक्ति मार्ग में तो भावना चलती है, तो भावना में अंधश्रद्धा भी होती है, तो उनकी जिसमें जिसकी जिस इष्ट में भावना होती है उसका रात दिन वैसा ही पूरा करके और वो अपना अल्पकाल का फल प्राप्त करते हैं, तो उनकी और भावना बैठ जाती है। लेकिन ज्ञान मार्ग में जो है बाबा के बच्चे जब बाप को पहचान लेते हैं, तो पहचान कर वो निश्चय करते हैं, और निश्चय के बाद हमारी भावना और बढ़ती जाती है। भावना तो रहती है लेकिन और बढ़ती जाती है। तो ज्ञान मार्ग में चाहिए निश्चय। निश्चय में भी है कोई का अटूट निश्चय है, चाहे कितने भी संकट आ जाएं, कितने भी, क्योंकि जब समय आता है कई ऐसी परिस्थिति आती है कि जब मनुष्य ये सोचता है कि आप पता नहीं बाबा मेरी मदद करेंगे कि नहीं, लेकिन जिन बच्चों को निश्चय होता है चाहे कुछ भी हो जाए, हर बात में ड्रामा कल्याणकारी है, कि कितने भी विघ्न आ जाएं उसमें भी कोई ना कोई कल्याण छिपा हुआ है। जैसे बताया था बाबा ने एक बार कि जैसे नारियल होता है वो कितना ऊपर से सख्त होता है लेकिन अंदर में कितना सॉफ्ट होता है, ऐसी कोई कोई घटना ऐसी लगती है कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसका अंत कोई ना कोई कल्याण होता है। जैसे एक बार की बात है, कुछ बच्चे जा रहे थे और गांव के अंदर थे, तो वो ट्रक चलाने वाला जो था वो ट्रक चलाता था, आगे आगे ले जाता था, और जब नजदीक आता तो वो फिर चला लेता, उसको बैठने नहीं देता। दो तीन बार ऐसे किया, तीसरी बार भी ऐसे किया, तो कहने लगे देखो ये कैसे, या तो खड़ा ही नहीं करे, और खड़ा नहीं किया और ऐसे ही, तो उनको अंदर ही अंदर थोड़ा आवेश आ रहा था। इतने में बस आ गई और बैठ गए, और उसके बाद आगे चल के क्या देखते हैं कि उस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, तो कहने लगे बहुत अच्छा हुआ हम नहीं बैठे तो आज हमारा भी एक्सीडेंट हो जाता। कई दफा ऐसा होता है कई ट्रेन या कुछ बात मिस हो जाती है, वो कहते हैं अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे कितना कल्याण है। अनेक अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं, देखने में आता है कि बहुत ऐसे है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन उसके पीछे हम बाद में देखते हैं कितना बड़ा कल्याण है। तो हमारी भावना, हमारा निश्चय कभी भी नहीं टूटे। कहते हैं ना, सत्य की नैया डोलती है परंतु डूबती नहीं, तो ऐसे ही हमारा अटूट निश्चय चाहिए। जैसे अंगद का मिसाल देते हैं, अंगद को कितना हिलाया गया लेकिन वो हिला नहीं, वो क्या था, वो निश्चय है। निश्चय को हिलाने के लिए हर प्रत्येक के जीवन में कुछ ना कुछ परीक्षाएं आती हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं आती हैं। कोई ऐसा नहीं है बाबा का बच्चा जिसके सामने पेपर ना आए, क्योंकि हमें क्या होना है, हमें तो पास भी ऑनर होना है, कितनी भी पेपर आए लेकिन हमें तो पास ही होना है। उसके लिए हम यही अपने अंदर संकल्प रखें, कुछ भी हो जाए लेकिन हमें एक्यूरेट चलना है। कोई ठीक नहीं चलता, आज चलते हैं कि बस गाड़ी कोई ठीक नहीं चलती, पर हमें तो एक्यूरेट चलना है, नहीं तो कहते हैं एक्सीडेंट किसका होगा। इस प्रकार से हम आत्माएं बाबा के बच्चे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए आगे बढ़ते चले, तो इसके लिए हम अपने जीवन के अंदर ये हम लक्ष्य रखें कि हमें नंबर वन में जाना है, क्योंकि ये कलप कलप की बाजी है। अगर एक कलप में हमने जीत लिया तो हर कलप, अगर कलप कलप का लक्ष्य होगा तो जरूर आप देखेंगे कि हम तीव्र पुरुषार्थ जीवन 108 की माला में आ सकते। हर एक बाबा ने कहा भी था, कोई ये ना सोचे माला तो बन गई, महारथी आ गए, लेकिन हम कैसे। मैंने कहा कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी अपना इस हर प्रकार से पुरुषार्थ करके 99 नंबर कहें, 100% तो कह नहीं सकते, नंबर चारों ही सब्जेक्ट में लेकर के, और वो आगे फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। क्योंकि बाबा बार बार यही कहता है कि बच्चे अब तुम्हें सबको नंबर वन में जाना। अब ये अंदर में जब भावना आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है कि मुझे तो नंबर वन में जाना ही है, चाहे कितना भी प्रसाद करना पड़े, रात दिन एक करना पड़े, मुझे जाना ही आगे। आज दुनिया में देखो, आप कोई छोटी मोटी डिग्री नहीं लेना चाहता, हर एक से पूछो, कोई PhD कर रहा, कोई कोई कर रहा, माना आजकल लड़कियां भी बड़ी अच्छी अच्छी आज देखेंगे डिग्रियां ले रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और बाबा के बच्चे जो हैं, इसमें भी केवल हम ब्रह्मा कुमार बन गए या ब्रह्मा कुमारी बन गए तो केवल इतना ही काफी नहीं है, लेकिन उसमें भी हम अपना हर रीति से पुरुषार्थ कर सकते हैं, स्टडी करके, योग को चार्ट को बढ़ा करके, धारणा को बढ़ा करके अपना अच्छे नंबर जा सकते हैं। लेकिन कब, जब हमारा लक्ष्य हमारा होगा कि हमें कर्मातीत अवस्था को पाना ही है किसी भी हालत में, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आज बाबा बार बार कहते हैं फरिश्ता बनना है, तो फरिश्ता बनने के लिए हमें, फरिश्ता क्या होता है, रक्षक होता है, फरिश्ता क्या होता है, डबल लाइट होता है। तो हम देखें तो क्या हम डबल लाइट हैं, हम हरों के लिए रक्षक हैं। किसी भी परिस्थिति में हम अनेक आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। तो बाबा ने आज ये भी बताया है कि बाबा अंत में ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितने सेंटर बनाए या कितने सेवाएं की, बाबा देखेगा हमारी अवस्था, हमारे अंदर की स्टेज कितनी बनाई, जो हर परिस्थिति में हम एक रस रहें, हर्षित रहें, किसी भी परिस्थिति में हमारी हार नहीं हो हमारी, तो ये हम ऐसी देखें। और परिस्थिति में कई जो हिल जाते हैं तो कई दूसरों की महिमा देख करके कोई ईर्ष्या करते हैं, या एक बात और भी है, अगर किसी के अंदर कोई कमी देखते हैं तो उसका चिंतन करते रहते हैं, इसके अंदर ये कमी है वो कमी। बहुत सी माताएं भाई बहने आते हैं, वो आज यही सुनाती हैं, मैं बहुत चिंता में हूँ, मेरा बेटा यूं है, मेरे बेटे के अंदर ये कमी है, मेरे पति के अंदर, तो इस प्रकार की अनेक चिंता में पड़ी। अपनी चिंता कुछ नहीं है, अपने अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरों की चिंता में अपना टाइम लगा रहे, तो उसके लिए हम यही लक्ष्य रखें। कहते हैं मिसाल तौर पर एक कबीर ने भी एक दुआ बोला है कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के बीच जो बोएगा सो काटेगा वो पाएगा, तुमको भय उदास। तो इस प्रकार से माना कबीर जो बार बार सोचता था आज इसने इतने काटे, आज इसने इतने काटे, तो कई बार हम दूसरों का चिंतन करते हैं, इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसका वर्णन भी करते हैं, तो बाबा कहते बच्चे ये टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, अब तो हरेक का गुणगान करो, हरेक आत्माओं की विशेषताएं बोलो, जो कमी है विशेषता के रूप में बल करके और उस आत्मा को भी आगे बढ़ाओ, और ये छोटी छोटी कमियां ही हैं जो हमें नीचे नीचे गिराती हैं, इसलिए हम ये पूरा लक्ष्य रखेंगे तो हम आगे बढ़ करके अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। आज यहीं पर ये हम सभी संकल्प करें कि इस बार जो भी बाबा कहेंगे उसको हम जरूर प्रैक्टिकल में ला करके बाबा का नाम वाला करेंगे, चाहे बाबा सेवा की प्रेरणा देंगे, चाहे हमको योग की प्रेरणा देंगे, जो भी देंगे, हम तो हमेशा अपनी डायरी में ऊपर लिख देती हूँ 11 बारी पढ़ना है, हमारी प्यारी दादी जी का सुना है, जानकी दादी इसको 6 बारी वाणी को पढ़ती है, मैं बाबा की वाणी को हम 11 बारी 21 बार भी पढ़ते हैं, किस लिए कि वो वाणी हमारे अंदर छप जाए, कभी कोई पॉइंट ध्यान में आती है, कभी कोई पॉइंट ध्यान में आती है, तो क्यों ना उसका एकदम मनन करके चिंतन करके हम एक ही बात से एक एक रत्न हमें ऐसा ऊंचा बनाने वाला है, तो बाबा के इन रत्नों की हम कदर करें, तो जितना हम इस रत्नों को धारण करेंगे तो सतयुग में उतने ही तो हीरे आपके ताज में जड़े जाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा ही है कि जो अंत में क्या साथ जाएगा, यही रत्न जो बाहर कॉपियां तो वही रह जाएंगी, जो हमारी बुद्धि में होंगी, जो हमारे जीवन में होंगी, वही अंत में हमारे काम में आएगी, तो इसलिए क्यों ना उसका मनन चिंतन करके हम मगन अवस्था में अपने जीवन को शेष बनाएं और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बने, एक उदाहरण बने, क्योंकि आज क्या चाहिए, उदाहरण मूर्त चाहिए, आज वास्तव में केवल सुनना नहीं है लेकिन उसको जीवन में धारण करना है, हर एक जीवन प्रैक्टिकल चाहता है, आज योग की कितनी महिमा चल रही है कि आज योग की पानी भी जो है योग लगा के पीते हैं तो कईयों को शफा हो रही है, इस प्रकार से हर प्रकार से आप देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ज्ञान से शरीर की बीमारियां भी ठीक हो रही हैं और साथ साथ में अनेक आत्माओं के जिसको कहते हैं लड़ाई झगड़े सब खत्म हो रहे हैं, और आज हम सभी बच्चे बाबा का नाम इसी प्रकार से वाला करेंगे, अब तो साधु महात्माएं भी जिसको बाबा कहते हैं कि बड़े शेरों का शिकार करेंगे, तभी वो आत्माएं भी आकर के बाबा से अंत में उन्हीं के आगे सिर झुकाएंगे, जितने भी धर्म पिता हैं वो भी आके झुकाएंगे, वो तब झुकाएंगे जब हमारी अवस्था बिल्कुल एक रस और ऐसी ऊंची अवस्था बन जाएगी, जो पीछे क्या कहेंगे लाइट, हमारे द्वारा दूसरों को लाइट ही लाइट दिखाई देगी, जैसे सामने चेहरा नहीं लाइट दिखाई दे, जिसको कहते हैं बाबा कहते हैं यही चमत्कार ही नमस्कार अंत में आत्माएं हम आत्मा को करने वाली हैं, तो इस प्रकार हम अपने जितना सम्मान में रहेंगे उतना ही हम सम्मान पाएंगे और दूसरों का भी हम सम्मान करेंगे, इसी प्रकार से आप हम सभी बाबा का जरूर इस सभा विशेष रूप में ये जो प्रत्यक्षता वर्ष भी है, अंतिम वर्ष भी है, समय भी पुकार रहा है और प्रत्यक्षता भी होनी है, तो कैसे होगी, हमारे जीवन के द्वारा ही होनी है, तो इन गुणों को धारण करके अपना जीवन हम सफल बनाएं। ओम शांति।